તારીખ 29/8/1998 શ્રી તત્વાનુશીલનમાંથી સરળતાના આર્ટિકલ ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 696.
પર્વનો આજે ત્રીજો દિવસ છે. ઉત્તમ ક્ષમા, ઉત્તમ માર્ગવ અને ઉત્તમ આર્જવ સમ્યક દર્શન પૂર્વકની સમ્યક પ્રકારની સરળતા એને આર્જવ કહે છે. આર્જવ એટલે સરળતા. કુદરતી આપણે સરળતાનું પ્રકરણ ચાલે છે બે દિવસથી, આજે ત્રીજો દિવસ છે. હા, ઉત્તમ આર્જવ મને સમ્યક દર્શન પૂર્વક જો સરળતા હૈ ઉસકો ઉત્તમ આર્જવ કહેતે હૈ. તો જૈન શાસ્ત્ર કી ભરી ભાષા કા શબ્દ હૈ આર્જવ. ચાલુ ભાષા મેં સરળતા કહેતે હૈ. માયા કપટ કે પરિણામ કા નુકસાન દેખકર મુમુક્ષુ કો જીતની અપની શક્તિ હૈ ઉતની સરળતા સે વર્તના ચાહીએ. સરળતા અસરળતા સે પશુગતિ હોતી હૈ વો બાતો આર્જવ ધર્મ કી પૂજા મેં ભી આતી હૈ. અપન સુબહ પૂજા કરતે ને ઉસમેં આર્જવ ધર્મ કી જો બાત આઈ તો પશુગતિ હોતી હૈ. ક્યોંકિ અસરળતા સે વો ટેઢે પરિણામ હૈ ઓર શરીર ભી ટેઢા મિલેગા. કમ સે કમ જ્યાદા સમજ નહીં પડે તો ભી મુમુક્ષુ કો અસરળતા કા ફલ કા નુકસાન સમજ કર ભી કે ભી સરળતા મેં આના ચાહીએ. જ્ઞાની તો અપને સ્વરૂપ કે આશ્રય સે સરળતા મેં રહેતે હૈ ઓર સંપૂર્ણ સરળતા કે લીએ ઇન દિનોં મેં વો આરાધના કરતે હૈ. વો આરાધના કે પર્વ કો પર્યુષણ પર્વ કહેતે હૈ. વો તો વે લોગ તો ચારિત્ર મોહ તોડને કી બાત કરતે હૈ. મુમુક્ષુ કો અપની ભૂમિકા કે અનુસાર જીતની હો સકે ઉતની સરળતા રખના અચ્છા હી હૈ. કહાં કહાં કૈસી સરળતા અસરળતા હોતી હૈ દો દિન સે તો કાફી પ્રકરણ ચલા હૈ. આજ ભી તત્વાનુશીલન મેં સે 109 નંબર કા પેજ મેં બાત ચલ રહી હૈ કે શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કરને વાલે કો અસરળતા કૈસે સ્વાધ્યાય કે વિષય મેં હો જાતી હૈ. શાસ્ત્ર કે વિષય મેં કૈસે અસરળતા હો જાતી હૈ ઇસકી ચર્ચા ચલ રહી હૈ. સત્શાસ્ત્ર મેં પ્રયોજનવશ નિશ્ચય ઓર વ્યવહાર મેં કથન કરને કી પદ્ધતિ હૈ. પ્રયોજનવશ કભી નિશ્ચય કી મુખ્યતા કી જાતી હૈ, પ્રયોજનવશ કભી વ્યવહાર કી ભી મુખ્યતા શાસ્ત્ર મેં કથન મેં આતી હૈ. દોનો મેં પ્રયોજન તો એક હી હૈ લેકિન કથન દોનો પ્રકાર કે હૈ, કભી કિસકી મુખ્યતા કભી ઇસકી મુખ્યતા. ઉદાહરણ દિયા હૈ લિયા હૈ સમયસાર કા હી ઉદાહરણ લિયા હૈ કે રાગ કા કરતા જીવ નહીં બલ્કિ પુદ્ગલ હૈ એસા સમયસાર મેં આતા હૈ. ઓર સમયસાર મેં વો ભી આતા હૈ કે રાગ કા કરતા જીવ હૈ. ये दोनों आगम वचन है. स्वभाव दृष्टि से आत्मा अकर्ता है और प्रमाण की अपेक्षा से आत्मा खुद ही राग का करता है. दोनों आगम वचन है, आगम के ही वचन है. और दोनों में राग का अभाव करने का प्रयोजन है प्रयोजन दोनों में दो प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन तो दोनों में एक ही है, इसलिए दोनों में आशय की अविरुद्धता है। आशय माने इरादा, आशय माने इरादा, उद्देश्य। उद्देश्य तो राग का अभाव करने का ही होता है। प्रत्येक आगम वचन में राग द्वेष मोह का अभाव करके वितरागता कैसे उत्पन्न हो, यही आशय रहता है। स्वभाव दृष्टि से वो बात थोड़ी गहरी है और सूक्ष्म है। स्वभाव दृष्टि से दृष्टि के बल से ये बात कहने में आई है कि मेरा जो स्वरूप है और स्वभाव है उसमें तो राग करने का कोई गुण ही नहीं है। मैं स्वभाव से राग कर सकूं ऐसा बन ही नहीं सकता, और मेरी ये दृष्टि हो गई। फिर इसे दृष्टिवान को कोई पूछे कि फिर ये राग किसने किया, तो कि पुद्गल ने किया। जीव स्वभाव में तो करने की कोई शक्ति नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं तो नहीं कर सकता, तो फिर किसने किया, तो क्या जवाब देगा, तो पुद्गल ने किया। तो पुद्गल ने कैसे किया, तो पुद्गल कर्म का उदय आया था, और पुद्गल कर्म के साथ पुद्गल का भाव पुद्गल सदृश हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया और मैं कुछ ऐसा राग कर भी नहीं सकता। मेरा स्वरूप को दृष्टि में रखकर ये बात मैं करता हूं कि मैं तो राग कर ही नहीं सकता, फिर भी जो होता है तो वो पुद्गल करता है, उसमें पुद्गल की व्यापकता है, मैं तो मेरी व्यापकता उसमें है ही नहीं। ऐसी तिक्खी स्वभाव दृष्टि की ये बात है, और ऐसी तिक्खी दृष्टि में राग का तीव्र निषेध होता है और राग का अभाव होने का ये कारण बनता है, वितरागता का ये कारण बनता है, ऐसी बात है। ज्ञानी की बात, बात ज्ञानी की है, अज्ञानी की नहीं है। अज्ञानी ऐसे लेवे तो परिभ्रमण बढ़ जावे उसकी वो बात नहीं, ये तो ज्ञानी की बात है। समय सार की बात चली ना, तो आगम में तो दोनों बात आएगी। दृष्टांत लेते हैं ना, कोई लड़का घर का बिल्कुल पायमाली का काम करता है और कहने पर भी नहीं समझता है, तो क्या करेंगे, निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, तो तुम हमारा लड़का नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई इस घर में अधिकार नहीं। और पेपरों में भी दिया जाता है कि ये जो फलाना फलाना है इसके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, फिर भी कोई व्यवहार करेगा तो कोई हमारी जिम्मेवारी नहीं रहेगी। आता होता है कि नहीं होता है, जोर से धक्का देने की बात है। राग मेरा नहीं है ऐसा कहने में राग को जोर से धक्का देने की बात है। क्यों, कि इसी वक्त सम्यक ज्ञान में तो ज्ञानी जानता है कि राग अपेक्षा से मेरे में होता है, पर्याय की अपेक्षा से, चारित्र गुण की अपेक्षा से मेरे में होता है, वो ज्ञानी जानता है, उसी वक्त जानता है। फिर भी वो दृष्टि का वहाँ जोर है, दृष्टि की पकड़ है, दृष्टि का वक्कर है, तो ऐसी बात भी करते हैं, और ऐसा आता भी है शास्त्र में। उसमें भी प्रयोजन बदलता नहीं, आशय बदलता नहीं, आशय अविरुद्ध है। अपना दोष देखने में भी उसका निषेध करना है और नहीं देखने में भी निषेध ही करने की बात है, दोनों बात ऐसी ही है। दृष्टि उनको देखती नहीं। जो सरल परिणामी जीव को सहज रूप में ऐसे आशय को साधने में आता है, जो असरल परिणामी है उसको विरोध लगेगा। ये मति की असरलता है। जिसको मति ज्ञान सरल है उनको तो दोनों में दो एक आशय बराबर पकड़ने में आ जाएगा, तो उनको तो कोई गड़बड़ होने वाली नहीं है। वह यथार्थ रूप से दोनों वचनों को मुख्य गौणता पूर्वक ग्रहण करता है, परंतु मति की वक्रता के कारण जीव को विरोध भासित होता है। ये मति की वक्रता के कारण होता है, जिससे आत्महित साधने में आ नहीं सकता। मति असरल होने से आत्महित वो साध सकता नहीं है, जबकि सरल परिणामी जीव को ऐसा निश्चय वर्तता है कि ज्ञानी पुरुष के वचन हमेशा पूर्वार्ध पर अविरुद्ध ही होता है, आगम वचन भी हमेशा पूर्वार्ध पर अविरुद्ध ही होता है। ऐसा निश्चय वर्तता है, ऐसा विश्वास रहता है, और वो भी अंधविश्वास नहीं है। वो आशय को पकड़ लेता है कि इधर भी एक ही आशय है, उधर भी एक ही आशय है। आगे कहते हैं, सत्संग की उपासना तथा सत्शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय सरल परिणामों से करने की श्री जीनाज्ञा है। वो कृपालु देव ने 24 नंबर के सत्संग के पाठ में वो बात ली है कि जहाँ शास्त्रों की सरल सिद्धांत की सरलता से चर्चा होती हो, सिद्धांत की चर्चा होती है वो सत्संग ऐसा नहीं है, सरलता से होती हो। सरलता का मतलब क्या? कि सभी सिद्धांत आत्महित के लिए प्रतिपादन किया गया है। कोई सिद्धांत आत्मा का अहितकारक है पर उसी ढंग से प्रतिपादन किया हो, ऐसा तो नहीं है। तो उस आत्महित को लक्ष्य में रख करके इसी प्रकार से उसको ग्रहण करना, आत्महित होवे उसी प्रकार से ग्रहण करें, तब तो उस शास्त्र का सिद्धांत का अध्ययन सरल परिणाम से हुआ, वरना असरल परिणाम से नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। इसलिए जिनाग्ना है कि सत्संग की उपासना करनी हो या शास्त्र का अध्ययन या स्वाध्याय करना हो, सरल परिणामों से करना है, पर तभी सत्य का ग्रहण अथवा तत्व का ग्रहण सुलभता से होता है और तभी बात समझ में आती है तथा जीव गुणग्राही बनता है, गुण को ग्रहण करता है, अवगुण को ग्रहण नहीं करेगा। उसमें कैसे लेना है कि जैसे कथानुयोग चलता हो, पुराण महापुरुषों की कथा है, उसमें क्या है? महापुरुषों की कथा है। तो महापुरुषों की कथा में उनके उदय की बहुत सी बातें चलती हैं। रामचंद्र जी हैं, लौकिक बातों को मुख्य करके सीता जी को जंगल में भेज दिया,
बात तो सरासर अन्याय की लगे, बात तो सरासर अन्याय की दिखे हाँ। और शास्त्र पढ़ने वाला तो वो भी कहेगा कि सीता जी भी धर्मात्मा थे, सिर्फ रामचंद्र जी की पत्नी थी उतनी बात नहीं थी हाँ, कि पत्नी पर अधिकार जमाया, वो तो धर्मात्मा भी थे, सम्यक दृष्टि थे। तो लौकिक बात को मुख्य करे धर्मात्मा, या धर्मात्मा वात्सल्य को मुख्य करे? चलो पत्नी प्रेम दाम्पत्य प्रेम को एक साइड में रख लो, धर्मी के धर्मात्मा के प्रति तो वात्सल्य या धर्मानुराग होता है कि नहीं होता है? ये होता है, फिर ऐसा क्यों किया? जो बात सुनी सुनाई थी वो तो लौकिक बात थी, सामान्य लोग सामान्य जन कर रहे थे, लोग तो कैसा भी आरोप कर सकते हैं, इसमें क्या हो गया? हम धर्मात्मा को अन्याय कैसे करें? ऐसा क्यों नहीं सोचा रामचंद्र जी ने? हमारे आगरा में एक पंडित आए थे, बोला कि रामचंद्र जी की भूल हो गई। क्या बोला? वो ऐसा बोला कि रामचंद्र जी ने वात्सल्य नहीं रख करके सीता जी को जंगल में भेज दिया, वो भी बिना बताए। कैसे कैसे बात आती है देखो उदय भावों के। सीता जी को बताया नहीं, हम तुमको भेज रहे हैं जंगल में, तुम्हारा त्याग कर दे रहे हैं। वो कई दिनों से बात कर रही थी कि हमको यात्रा का विकल्प बार बार रहता है, क्योंकि पेट में भी बहुत बड़े धर्मात्मा आए थे, लवकुश थे, वो सगर्भ अवस्था में थे, लवकुश पेट में थे, वो भी चरम शरीरी धर्मात्मा थे, उसी भाव में मोक्ष में गए। जैसे रामचंद्र जी का मोक्ष हुआ, ऐसे लवकुश का भी मोक्ष हुआ है। तो उनको अच्छे अच्छे विचार आते थे, क्या है? तो उनको यात्रा का विचार आया करता था, मुझे यात्रा करनी है, तीर्थों की यात्रा करनी है। तो चलो तुमको यात्रा करा देते हैं, हमको तो राज चलाना है, हम तो नहीं आ पाएंगे, तुमको अकेले जाना होगा। ऐसा करके उनको भेज दिया, यात्रा भी कराई और वापसी में जंगल में छोड़ दिया। माया कपट हो गया, अन्याय हुआ, माया कपट हुआ, सब कुछ हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या ऐसे महापुरुष का दोष दिखाने के लिए वो कथा लिखी गई क्या है? सरल परिणामी जीव कैसे बात को पढ़ेगा, कथा को कैसे समझेगा? मुद्दा क्या है, चर्चा का मुद्दा क्या है? कि सरल परिणामी होगा तो दोष नहीं देखेगा, गुण को देखेगा। देखो ऐसे उदय भाव होते हैं ज्ञानी को भी, कभी कभी ऐसे उदय भाव हो जाते हैं, स्थूल भूल दिखे लौकिक दृष्टि से, सामान्य बुद्धि में लोगों को भूल दिखे, फिर भी वो अपने श्रद्धा ज्ञान और आत्मज्ञान में वैसे के वैसे अडिग थे, कोई फेरफार नहीं। वो तो रामचंद्र जी जानते हैं अपने परिणमन को, दूसरे का क्या समझे? वो सामान्य जन का बूता नहीं है समझने का, फिर भी आचार्यों ने रामायण लिखी तो कुछ बोध देने के लिए लिखी है, उपदेश लेने के लिए लिखी है। रामचंद्र जी का अवगुण दिखाने के लिए रामायण नहीं लिखी है। ऐसा सरल परिणामी जीव को विचार आता है, जो वक्र परिणामी होते हैं उनको तो महापुरुष का भी दोष दिखता है, धर्मात्माओं का भी दोष दिखता है, ऐसा कहने का यहाँ अभिप्राय है। इसलिए गुणग्राही बनता है सरल परिणामी जीव, गुणग्राही बनता है, वक्र परिणामी जीव दोषग्राही बनता है। मतलब क्या हुआ, हमारे यहां भी गुण दोष की चर्चा मुख्य रूप से हम लोग करते हैं। गुणग्राही बनना या दोषग्राही बनना, वो अपनी सरलता और अपने असरलता पर आधारित है। हमको गुण लेना है, दोष गौण कर देना है। अगर दोष ही मुख्य करना है तो अपना खुद का करो, दूसरे का मत करो। और गुण को मुख्य करना है तो दूसरे का करो, अपने का मत करो। ये नीति है, ये धर्म की नीति रीति ऐसी होती है। अपने लिए दूसरी बात, दूसरों के लिए दूसरी बात। अनंत काल में अनंत बार सत्पुरुष का योग मिला, ऐसा योग मिला होने पर भी उनकी पहचान नहीं होने के अनेक कारणों में मुख्य कारण जीव की असरलता रही। सत्पुरुष की पहचान नहीं, उसका क्या कारण हुआ कि उनको दोष को मुख्य कर लिया, छोटे दोष को मुख्य किया, बड़े गुण को गौण कर लिया। यही वक्रता है, वही असरलता है। भीतर में अपना सम्यक परिणमन से अपने स्वरूप की उपासना करते हैं, इतनी बड़े गुण को तो देखा नहीं। पर चारित्र मोह में कोई छोटे दोष हुए तो उनको मुख्य कर लिया। ये सरलता नहीं है, असरलता है। और ऐसी मति की असरलता के कारण सत्पुरुष का योग बनने पर भी सत्पुरुष की पहचान नहीं आई। ओग संज्ञा से ज्ञानी पुरुष की भक्ति और बहुमान करने पर भी वंचना बुद्धि रह जाती है, उसमें सरलता की न्यूनता है, ऐसा समझने योग्य है। क्या कहा कि दोष नहीं देखे, चलो भक्ति करे बिना पहचान। ओक संज्ञा मैंने बिना पहचान भक्ति करता है, बहुत प्रकार से करता है, उसमें भी अनेक प्रकार है ओक संज्ञा। दूसरा करता है तो वो करने को लग जाता है, देखा देखी से भी कोई करता है, कोई आशा अपेक्षा से करता है, लेकिन केवल आत्मकल्याण से निष्काम बुद्धि से करता है वो बात अलग हो जाती है। ऐसा नहीं होता है पर ओक संज्ञा से भक्ति करता है, ऊपर ऊपर से चलता है, तो उसमें वंचना बुद्धि रह जाती है। वंचना बुद्धि में क्या कि उनको खुद को ऐसा लगता है कि मेरी भक्ति तो है, दूसरे की ज्यादा होगी, मेरी थोड़ी कम है, लेकिन है तो सही। बस ऐसे भाव में वंचना में ने खुद को भ्रम हो रहता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। खुद अपने को पता नहीं चलता है कि वहां मुझे नुकसान कितना है। जितनी अपनी लघुता आनी चाहिए और जितनी महत्ता आनी चाहिए, इतनी महत्ता नहीं आती है। 526 है ना, 526 होगा तो वहाँ थोड़ी भक्ति करते हैं, उसमें वंचना बुद्धि रह जाती है, वो उतनी सरलता कम है। चौपाल जी का पत्र में वो बात आई है, वो यहाँ लिया है। सत्संग सदगुरु सत्शास्त्र आदि साधन कहे हैं, यह साधन की आराधना जीव को निज स्वरूप प्राप्त करने के हेतु से ही है। तथापि जीव यदि वहाँ भी वंचना बुद्धि से प्रवर्तन करता है तो कि कभी भी उसका कल्याण नहीं होता। आगे जाकर के होगा ऐसा नहीं लिया, कभी भी इसका कल्याण नहीं होता। वंचना बुद्धि माने क्या? वंचना बुद्धि अर्थात सत्संग सद्गुरु आदि में खरा आत्मभाव से, सच्चा आत्मभाव से महात्म बुद्धि आनी चाहिए, वो महात्म बुद्धि नहीं आई। सच्चा आत्मभाव से महात्म बुद्धि आनी चाहिए, उस प्रकार से नहीं आई, उपसंगना चाहिए। और अपने अपना आत्मा को अज्ञानता ही वर्त रही है, इसलिए अपनी अल्पज्ञता और लघुता विचार करके अपनी अमहात्म बुद्धि नहीं, वो कैसे होती है, है अल्पज्ञता और गुण प्रकट नहीं किया, लघुता है, गुरु नहीं हुआ, महान नहीं हुआ, फिर भी मैं समझता हूँ, फिर भी मुझे भी मालूम है, मैं भी समझता हूँ, वो बात आ जाती है, तो अपनी अमहात्म बुद्धि नहीं रहती। और सत्संग सद्गुरु आदि में उस प्रकार से वर्तना नहीं, महात्म बुद्धि और अमहात्म बुद्धि से नहीं वर्तना, ये भी वंचना बुद्धि है। वहां भी जो जीव लघुता को धारण न करे, सत्संग और सत्पुरुष के प्रति भी अपनी लघुता को धारण न करे, तो प्रत्यक्ष रूप से जीव भव भव परिभ्रमण की का भय उसको हुआ नहीं, परिभ्रमण का भय उसको नहीं हुआ, वो बात प्रत्यक्ष हो जाती है, अनुमान करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही विचार करने योग्य है। ज्यादा लक्ष्य तो सबसे प्रथम जीव को ऐसा होवे, ऐसा लक्ष्य सबसे प्रथम होवे कि मेरी भक्ति कितनी, मैं कहीं वंचना बुद्धि में तो नहीं, ऐसा लक्ष्य होवे तो सर्व शास्त्रार्थ और आत्मार्थ, शास्त्र का परमार्थ और आत्मा का हित आत्मार्थ सहज रूप से सिद्ध होना संभवित है, प्राप्त होना संभवित है, यही विज्ञापन है आत्मस्वरूप का प्रणाम, ऐसा विज्ञापन करके छोड़ दिया है बात को। ये बात, ये पत्र लिखा है लल्लू जी स्वामी को लिखा है, देखो जी इनके कैसे कैसे परम भक्त को कैसे कैसे बात लिखी है कि कहीं वंचना बुद्धि से भक्ति मत करना। क्यों? कि वो त्यागी के वेश में थे, लोग उनके पास समझने को आते थे, दूसरे को समझाते थे, उनको अहम भाव होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। गुण का मतलब क्या, साबित करने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात है। लघुता मैंने नम्रता आनी चाहिए, तो मेरे में कुछ नहीं है, मेरे में कुछ नहीं है, मेरे को तो बहुत बाकी है, इसने मतलब मैं भी कुछ हूँ, ये आ जाता है। ये जो आ जाता है, थोड़ा बहुत सूक्ष्म ज्ञान हुआ, थोड़े बात समझ लिया सत्संग में बैठ करके या शास्त्र पढ़ करके, मैं भी कुछ हूँ, ऐसा आ जाता है, तो भवभ्रमण से डरता नहीं है। क्या है वो जीव? भवभ्रमण से डरता नहीं है, ऐसा बोले। कितना जोर से बात लिया है, देखो
ऐसा क्यों हुआ, असरलता क्या इसलिए हुआ,
अपने आत्महित के विषय में असरलता कर दिया,
सरलता नहीं रखी।
तो अपने आत्महित में सरलता नहीं करता है वो, दूसरे के व्यवहार में सरलता कहाँ रखेगा, ये सवाल ही नहीं। वंचना,
खुद धोखे में रह जाता है उसको वंचना बुद्धि कहते हैं। क्या
पोते पोता थी छेतराई जाए छे, गुजराती में एम कहूं, वंचना એટલે છેતરવું।
કોણ કોને છેતરે છે કે પોતે પોતાના આત્માને આ છેતરે છે, હું તો ભક્તિ કરું છું ને, મને તો ભક્તિ છે ને, મેં તો થોડા ભક્તિ કરતા હું ને,
મેં ક્યાં વિરોધ કરતા હું,
કોઈ દૂસરા વિરોધ કરતા હોય લેકિન મેં તો વિરોધ મેં નહીં હું, મેં તો ભક્તિ વાળા હું, એસા ભી નહીં ચલતા।
એસા કહેતે
આત્મહિત કરના હૈ તો જીતના મહાત્મા આના ચાહીએ, उतनी महत्ता आनी चाहिए और उतनी भक्ति होनी चाहिए और अपनी उतनी लघुता आनी चाहिए,
वरना असरलता हो जाएगी
और वंचना बुद्धि से वो भ्रम में रह जाएगा कि मैं भी भक्ति करता हूँ।
तो ऐसा छिपा दोष कहीं रह नहीं जाए, इसलिए बहुत पड़खों से ये पत्रों में बहुत सी बातें आई हैं, अनेक पड़खों से बहुत सी बातें आई है कि कहीं मुमुक्षु ऐसी भूल नहीं करे। आगे चारों अनुयोगों में यानी जिन वाणी में अनुयोग अनुसार विषय और अनुयोग अनुसार सिद्धांतों का प्रतिपादन है, कथानुयोग में कथा का विषय चलता है, द्रव्यानुयोग में पदार्थ के विज्ञान का विषय और सिद्धांत चलता है, चरणानुयोग में आचरण का विषय और सिद्धांत चलता है, कर्णानुयोग में कर्म का चलता है सिद्धांत। बस थोड़े में ज्यादा मान लिया, अपनी लघुता को समझा नहीं, अपने गुण तो प्रकट किया नहीं, दोष तो बहुत भरे हैं, फिर भी असरलता कर दिया, दोस्त को तो समझे नहीं और न गुण को भी समझा है, गड़बड़ कर दिया। ऐसा अब क्या कहते हैं कि चारों अनुयोग में अपना अपना विषय और अपना अपना सिद्धांत का प्रतिपादन है, तथापि सर्वत्र चारों अनुयोग में अध्यात्म तत्व प्रतिपादन करने का आशय रहा हुआ है। चारों अनुयोगों में अध्यात्म तो है ही, पारमार्थिक असरलता के कारण क्या जीव को आत्मकल्याण के विषय में सरलता नहीं है तो जीव को आगम और अध्यात्म में विरोध भासता है, आगम और अध्यात्म में विरोध भासता है, जिससे तात्पर्य रूप वितरागता की प्राप्ति नहीं होती। आगम का तात्पर्य भी वितरागता है और अध्यात्म का तात्पर्य तो वितरागता है ही, तो डायरेक्ट है। आत्महित के आशय को मुख्य रख करके आगम के सिद्धांतों का ज्ञान कर्तव्य है तथा अध्यात्म तत्व की मुख्यता और आदर करने योग्य है। क्या बात लिया, आगम का विषय का ज्ञान करना और अध्यात्म को मुख्य करके आदर करना, अमलीकरण करना। उदाहरण कैसे करना, दृष्टांत दिया है कि द्रव्यानुयोग के अनुसार एक पदार्थ की सत्ता में द्रव्य के प्रदेश और पर्याय के प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं है, बल्कि एक ही है, क्षेत्र दोनों का एक है। एक ही क्षेत्र में द्रव्य भी है, एक ही क्षेत्र में पर्याय है। ये द्रव्यानुयोग का सिद्धांत बोलता है। उसी पर भी अध्यात्म तत्व परम पद का आश्रय करवाने हेतु अध्यात्म के प्रकरण में श्री गुरु का स्पष्ट उपदेश है कि पर्याय के प्रदेश भिन्न है और द्रव्य के प्रदेश भिन्न है। द्रव्य का प्रदेश भिन्न और पर्याय का प्रदेश भिन्न। क्यों? कि मेरे प्रदेश में विभाव तो हो ही नहीं सकते। मेरा क्षेत्र ऐसा है कि वहां से विभाव का उठना ही संभव नहीं है। वो तो स्वभाव को उत्पन्न करने वाला मेरा क्षेत्र है, तो मेरा क्षेत्र अलग है, विभाव का क्षेत्र अलग है। अगर दोनों का क्षेत्र एक होता, क्योंकि वो सत्ता गुण की पर्याय है, क्षेत्र है अस्तित्व गुण की पर्याय है, तो विभाव का नाश होने पर मेरा भी नाश हो ही जाता। तो जैसे राग पुद्गल का कहा, ऐसे पर्याय को भी भिन्न कर दिया और तभी द्रव्य का आश्रय हुआ। उस स्वरूप का आश्रय कराने के लिए वो बात चली है शास्त्र में। वहां पुरवार पर विरोध नहीं है, तथापि मति की असरलता के कारण विरोध भाषित होता है, जिसमें जीव आत्महित चुक जाता है। और क्या है कि द्रव्यानुयोग पढ़ने वाला विद्वत लोग होते हैं, विद्वान, तो विद्वान को तो ऐसा लगता है कि एक ही सत्ता में द्रव्य गुण पर्याय है, फिर पर्याय की भिन्नता कहां से आई ये बात। वो बात तो द्रव्यानुयोग को, सिद्धांत को तोड़ देती है, आगम विरुद्ध बात है। क्या लगेगा? आगम विरुद्ध। लेकिन आगम में जब वो बात है कि पर्याय के प्रदेश भिन्न है, तो कुछ सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? वो भी आगम में ही बात है। जिस आगम में द्रव्य गुण पर्याय का निरूपण किया है, यानी जिन आचार्यों ने द्रव्यानुयोग लिखा है, वही आचार्य ये बात करता है, तो अपनी बात को कोई काटता है क्या, या अपनी बात को पुरवार पर विरोध करता है क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो सरल परिणाम से सोचते नहीं है, वो बात को उल्टी सुल्टी ले लेते हैं और वो निषेध करते हैं। ऐसे अध्यात्म विषय का, अध्यात्म का विषय का निषेध कर देते हैं, उसको आत्महित होता नहीं है, वो आत्महित को चूक जाते हैं। ऐसी एक बात समय सार की करष्टिका में है। समय सार की करष्टिका है, ले लो, उसमें 271 नंबर का कलश है। अध्यात्म का विषय चला है और टीकाकार राजमल जी हैं। बहुत अध्यात्म का दृष्टिकोण को मुख्य करके तो लिख रहे हैं। तो ऐसा लिखा है कि नेग नायक संबंध में, नेग नायक संबंध के विषय में बहुत भ्रांति चलती है। ये तो शास्त्र में नेग नायक संबंध आता है, लौकिक में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। तेथी अतः कोई शास्त्र पढ़ने वाला ऐसा समझेगा कि जीव तो नायक है, पर पुद्गल से लेकर के भिन्न जो छह द्रव्य है, वो तो उसका ज्ञेय है। और वो बात शास्त्र में भी है कि आत्मा नायक है, छह द्रव्य उसके ज्ञेय है। परंतु ऐसा तो नहीं है, देखो क्या आगम विरुद्ध लिखा क्या, परंतु ऐसा तो नहीं है, ऐसी भ्रांति चल रही है। उसको तो भ्रांति बोल दिया, जैसा कहने में आता है वैसा है, यहाँ जो कहते हैं आते बात तो वैसी है कि जो कोई आत्मा है वस्तु स्वयं विज्ञेय रूप है। परंतु ऐसा ज्ञेय रूप नहीं है कि अपने से भिन्न छद्रव्य, जो छद्रव्य है वो ज्ञेय रूप है, वो ज्ञेय रूप नहीं है, मेरा आत्मा ही मुझे ज्ञेय रूप है। भावार्थ ऐसा है कि मैं ज्ञायक और समस्त छद्रव्य मेरे ज्ञेय, ऐसा तो नहीं है तो फिर कैसा है कि ज्ञान अर्थात जानपणा रूप शक्ति, ज्ञेय अर्थात जनाने योग्य शक्ति और ज्ञाता यानी अनेक शक्ति विराजमान आत्मा खुद, ऐसा तीन भेद मेरा स्वरूप मात्र है, ऐसा मैं ज्ञेय रूप हूं। भावार्थ ऐसा है कि मैं अपने स्वरूप को वेद्य वेदक रूप से ही जानता हूं, ज्ञाता भी मैं, ज्ञेय भी मैं और ज्ञान भी मैं, तीनों में ही हूं, दूसरे की बात ही नहीं है। मेरा नाम ज्ञान, मैं अपने से जनाने योग्य इसलिए मेरा नाम ज्ञेय, और ऐसे दो शक्ति से लेकर अनंत शक्ति इसलिए मेरा नाम ज्ञाता। ना जीव नायक है, जीव ज्ञेय है, ऐसा वचन भेद से भेद प्राप्त होता है, वो वचन में भेद है, मेरे वस्तु में तो ऐसा भेद भी नहीं है। जाओ, यहां कोई विद्वत लोग ऐसे ले लेते हैं कि देखो आत्मा में पर को जानने की शक्ति है ही नहीं, पर को छह द्रव्य को जानना वो भ्रांति इधर लिखा है, पर द्रव्य को जानना वही भ्रांति ऐसा लिखा है, इसलिए वास्तव में जो पर द्रव्य को जानता है वो भ्रांतिगत से जानता है। तो आत्मा का जो स्वरूप है उसमें जो ज्ञान शक्ति है वो स्वपर प्रकाशक शक्ति है, उस शक्ति का निषेध करने के लिए ऐसा नहीं लिखा है। सरल परिणामी जीव को क्या लगता है कि यहां वस्तु के स्वरूप का निषेध नहीं है, लेकिन वस्तु के स्वरूप का आश्रय कराने के लिए यही ये बात कही है, आश्रय पकड़ना चाहिए। और आगम का सिद्धांत का यहां तोड़फोड़ करने की बात है, ऐसा विचार करना नहीं चाहिए। जैसे मुनिराज को बचाने के लिए सम्यक दृष्टि राजा ने तलवार से सिंह को मार दिया और सिंह मर भी गया समझ लो, तो आशय मुनिराज को बचाने का था, सिंह की हिंसा करने का नहीं था। क्या आशय को पकड़ो, देखो संगनी पंचेंद्र की हिंसा सम्यक दृष्टि कैसे करता है, इतना द्वेष क्यों कि वहां ऐसा आशय नहीं है। बात तो दोनों बनी लेकिन आशय क्या है कि मुनिराज को बचाने का, ऐसे यहां निषेध किया ज्ञायिक संबंध का, तो स्वपर प्रकाशक शक्ति का निषेध करने का आशय नहीं है, वहां आशय स्वरूप का आश्रय कराने का है। सरलता से सिद्धांत का विचार करना चाहिए, और सरलता से करोगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। आगम में तो सब बात आएगी, शास्त्रों में तो दोनों बात आएगी, या शास्त्र में ही लिखा है, समयसार की टीका में वो बात लिखा है। आसन्न भव्य होता है वो मेल करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, जो आसन भव्य है वो मेल करके आत्महित को साधता है। जिसको भव्यता दूर है वो कैसे भी विचार करे असरलता से, इसको तो आत्महित होने वाला नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, एक बात नहीं है, बहुत सी बातें हैं, विस्तार करे तो उसमें ही समय निकल जाए, ऐसी कई बातें हैं। यह उपयोग की पारमार्थिक सरलता है, मतलब आखिरी पैराग्राफ है, सरलता का प्रकरण आज यहाँ समाप्त हो जाएगा। कि यह उपयोग की पारमार्थिक सरलता है कि अंतरंग में तिर्यक यानी तिरछी गति नहीं करता, आड़ा नहीं चलता, शुद्ध उपयोग होता है, वो पारमार्थिक सरल उपयोग है। सीधा ही आत्मा में ही उपयोग जाता है सरल हो करके। अपने आत्मा में चारित्र गुण में राग भी है और अपने आत्मा में ज्ञान गुण में उपयोग भी है, दोनों बाजू बाजू में बगल बगल में है। लेकिन वो बगल में जाता नहीं, आड़ा नहीं चलता, ऐसे साइड में नहीं जाता, अंतर में सीधा सरल होकर के जाता है, अंतर्मुख होकर के जाता है। उपयोग का बहिर्मुख होना वो पारमार्थिक असरलता है। अब टॉप लेवल की बात चलती है, उपयोग का बहिर्मुख होना यही उपयोग की असरलता है और उपयोग का अंतर्मुख होना यही उपयोग की सरलता है, वो पारमार्थिक सरलता है। तो राग से जुड़ता नहीं, बगल में चारित्र गुण में राग का अंश उत्पन्न होता है, उसमें वो जुड़ता नहीं, वो स्वरूप में जाता है। यानी कि बगल में रहे हुए राग का वह स्पर्श नहीं करते हुए, स्पर्श नहीं करते हुए सरल हो करके स्वयं को ग्रहण करता है। ऐसी सरलता उपादेय है। आखिर में कहाँ तक ले गया सरलता को, कि अपने स्वरूप में आ जाओ, सरल हो करके अपने स्वरूप में रह जाओ। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि परलक्ष जितना करते हैं उतनी असरलता है, जितना हम परलक्ष करते हैं उतनी हमारी असरलता है, जितना स्वलक्ष रखे उतनी हमारी सरलता है। बस सरलता में रहो, सरल 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 होकर के उपयोग स्वरूप में आ जाएगा, और असरलता से तो परिभ्रमण होगा ही होगा। यदि सरलता रहेगी तो वह अंतर्मुख होने में प्रतिबंधक, यदि असरलता रहेगी तो वह अंतर्मुख होने में प्रतिबंधक है। अतएव परम सरलता आदरणीय है, ऐसी परम सरलता है वह आदरणीय है। संक्षेप में सरलता स्व पर कल्याणकारी है। सरलता को देख करके, इस गुण को देख करके दूसरों को भी ऐसा लगेगा, अरे कितनी अच्छी सरलता है, हमको ऐसा होना चाहिए, हमको ऐसा होना चाहिए। गुण निज गुण तो निज को लाभकारी होता है, लेकिन दूसरे को भी लाभ का कारण बनता है। इसलिए सरलता स्व पर कल्याणकारी है और असरलता स्वयं के और अन्य के आत्मकल्याण में बाधक है। अपने आत्मकल्याण में भी बाधक है और दूसरों को आत्मकल्याण में भी बाधक निमित्त बनेगा। ऐसा सरलता का महत्व समझकर आत्महित साधना योग्य है। ऐसे सरलता के इतनी मुख्यता समझ करके जितनी हो सके उतनी सरलता करो, जितनी ताकत है उससे सरलता करो, इससे पारमार्थिक लाभ होगा और वही आदरणीय है। और यहाँ कृपालु देव ने 40 नंबर के पत्र में सरलता वाले को तो तत्व पाने का उत्तम पात्र में गिना है, ये तो उत्तम पात्र है। किसका? तत्व पाने का। तत्व मैंने आत्म तत्व पाना, मैंने अनुभव करना। आत्म तत्व का अनुभव करने में उत्तम प्रकार की योग्यता, पात्रता सरलता वाले को होती है, और पात्रता वाले को दर्शन मोह का अनुभाग टूटता है वो कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए सरलता वाले को दर्शन मोह मंद होएगा मुमुक्षु को, और असरलता होगी उतना दर्शन मोह तीव्र होगा। ये दर्शन मोह के दृष्टिकोण से भी ऐसा ही समझना चाहिए। अब एक बहुत अच्छी बात लिखा है, अनंत जन्म मरण कर चुकने वाले इस आत्मा की करुणा वैसे अधिकारी को उत्पन्न होती है और वही कर्म मुक्त होने का अभिलाषी कहा जा सकता है। क्या कहते हैं कि जिसको अपने आत्मा को परिभ्रमण से छुड़ाने की करुणा आई, अपनी आत्मा की दया आई, वही अधिकारी मैंने पात्र जीव है, तत्व पाने का वही पात्र है। ये वेदना क्यों होती है? परिभ्रमण की वेदना क्यों आती है? क्यों? परिभ्रमण से आत्मा को छुड़ाने के लिए आती है, तब तो जीव अधिकारी होता है और वही कर्म मुक्त होने का अभिलाषी कहा जा सकता है। उसको मुक्त होना है। जिसको वेदना नहीं आई उसको अभी मुक्त होना ही नहीं है, उसको परिभ्रमण प्रिय है। क्या है? उसको परिभ्रमण प्रिय है, ऐसा समझना चाहिए। वही पुरुष कौन? जिसको अपने आत्मा की दया करुणा आई, वही पुरुष यथार्थ पदार्थ को यथार्थ स्वरूप से समझकर मुक्त होने के पुरुषार्थ में लग जाता है। जिसको अपनी करुणा आई वही पदार्थ का स्वरूप यथार्थ समझेगा, वही हित अहित का विषय यथार्थ समझेगा और यथार्थ समझ करके मुक्त होने के पुरुषार्थ में यथार्थ प्रकार से वो लगेगा। दूसरा का पुरुषार्थ यथार्थ नहीं होगा। मुमुक्षु की भूमिका में यथार्थता वही इस भूमिका की सम्यक्ता है। क्यों? कि ज्ञान दशा में वो यथार्थता ही डेवलप होकर के सम्यक्ता को धारण करता करती है। यथार्थता का नाश हो जाए और सम्यक्त्व उत्पन्न हो ऐसा नहीं बनता। यथार्थता की वृद्धि होने पर सम्यक्त्व होता है। इसलिए जिसको अपने अनंत जन्म मरण कर चुका है ऐसे आत्मा की दया आती है, करुणा आती है, करे अभी भी मेरा अनंत जन्म मरण होवे वो बातों में किसी हालत में मंजूर करने वाला नहीं हो, उसी को ही यथार्थ पुरुषार्थ लगता है, उसी को ही यथार्थ सूझ आती है और वही कर्म के मुक्त होने का वास्तव में मोक्षाभिलाषी है। दूसरे को मोक्षाभिलाषी या पूर्ण का लक्ष्य वाला, पूर्णता का लक्ष्य वाला बोला जाता नहीं है। वो बात आ गई कि मोक्ष का अभिलाषी कौन, मोक्षार्थी कौन, पूर्णता का अभिलाषी कौन, कि जिसको अपनी आत्मा की करुणा आई है वो। तो पूर्व स्टेज है वेदना का, परिभ्रमण की वेदना का, फिर आता है कर्म का मोक्ष होने की बात, बाद में आती है पूर्णता के। यहाँ तक।